ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा विधानसभा का 15वां सत्र आज से शुरू। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा और कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के नवनिर्मित वासुदेव घाट पर पहला दिल्ली दीपोत्सव आयोजित। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि राजधानी के निजी स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। एक रिपोर्ट।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार दाखिले की पहली सूची अगले साल 17 जनवरी और दूसरी सूची 3 फरवरी को जारी की जाएगी। नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2025 तक 3 वर्ष, केजी के लिए 4 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम आयु सीमा नर्सरी के लिए 4 वर्ष, केजी के लिए 5 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया और अंक प्रणाली की जानकारी इस महीने की 25 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों को अपने विद्यार्थियों और पाठ्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देने को कहा गया है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों की भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए नई दिल्ली में ये दिशा निर्देश जारी किए। एक रिपोर्ट।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को अपने कामकाज के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण और अस्वीकरण को प्रमुखता से प्रकाशित करना होगा, जबकि नाबालिग छात्र छात्राओं की फोटो और प्रशस्ति पत्र इस्तेमाल करने की अनुमति ही उनसे लेनी होगी। संस्थानों को अपनी सेवाओं, सुविधाओं और बुनियादी ढांचों का भी सटीक ब्यौरा उम्मीदवारों को देना पड़ेगा। विज्ञापनों में झूठे और अप्रमाणित दावों, गारंटी और सफलता दर के प्रकाशन के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है।
हमने करीब अब तक 45 ऐसे प्रोमिनेंट IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की है। नोटिस भेजा गया है। 18 के ऊपर हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है।
उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक अग्र सक्रिय या प्रोएक्टिव तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श कुमार, नई दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यपालिका लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण नहीं कर सकती। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। एक रिपोर्ट।
शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर जोर देते हुए कहा कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता और मनमाने ढंग से विध्वंस शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने संपत्तियों के अनधिकृत विध्वंस को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। नामित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें सुनवाई का विवरण विधिवत दर्ज किया जाए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि विध्वंसक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि ये निर्देश एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हैं।
स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहाँ होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने भी शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी सांसद रंजीत रंजन ने नई दिल्ली में कहा कि उनकी पार्टी बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करती रही है।
शुरू से कांग्रेस और राहुल गांधी जी कह रहे थे कि ये इनलीगल है, आप इस तरह से बुलडोज संस्कृति नहीं चला सकते, जबकि संविधान और कानून हमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक तरीका देता है, कानूनी तरीका देता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोज संस्कृति को बिल्कुल सिरे से खारिज किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। तितालीसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष के मेले का विषय 2047 में विकसित भारत है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष झारखंड विशेष राज्य और बिहार तथा उत्तर प्रदेश भागी राज्य हैं।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश भाग ले रहे हैं। व्यापारिक कारोबार के लिए यह मेला कल से शुरू होकर 18 तारीख तक खुला रहेगा, जबकि आम जनता के लिए मेले का आयोजन 19 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। व्यावसायिक दिनों के दौरान वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 500 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं गैर व्यावसायिक दिनों में सप्ताह के अंत पर वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 150 रुपए और सप्ताह के दिनों के लिए 80 रुपए निर्धारित है। व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दिनों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम कल से व्यापार मेले के टिकटों की बिक्री शुरू करेगा। मेट्रो स्टेशन पर ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से टिकट उपलब्ध रहेंगे। मेले के टिकटों की बिक्री दिल्ली मेट्रो के 55 प्रमुख स्टेशनों पर 27 नवंबर तक की जाएगी। टिकटों की कीमतें विभिन्न श्रेणियों और दिनों के अनुसार निर्धारित की गई हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ऑनलाइन टिकट बिक्री दिल्ली मेट्रो रेल निगम के दिल्ली सारथी और डीएमआरसी मूवमेंट्स 2.0 ऐप पर 11 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इस ऐप पर एक व्यक्ति एक दिन में 10 टिकट ही खरीद सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल कल मेले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष के मंडप का विषय एक स्वास्थ्य है। ये विषय मानव, पशु और पौधों के बीच आपसी संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये मंडप 19 कार्यक्रम प्रभागों के माध्यम से मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। इसमें HIV, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर संचारी लोगों के लिए स्क्रीनिंग और परामर्श सत्र भी शामिल होंगे। इसके अलावा मंडप में दर्शकों के लिए स्वास्थ्य संदेश के साथ प्रतिदिन नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजित किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में वित्त आयोग के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय विकास के लिए वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। सम्मेलन का आयोजन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया के नेतृत्व में किया जाएगा। सम्मेलन में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धन के प्रभावी आवंटन में राज्य वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें 16वें वित्त आयोग के सदस्य पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज कश्मीरी गेट के पास नवनिर्मित वासुदेव घाट पर पहला दिल्ली दीपोत्सव आयोजित किया। दीपोत्सव का शुभारंभ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देव दीपावली से पहले आयोजित किया जा रहा है, जो दीपावली के 15 दिन बाद गुरु पर्व तथा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
यमुना नदी पर नव निर्मित वासुदेव घाट पर हजारों की संख्या में दिल्लीवासी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित दीपोत्सव पर्व देखने आए हुए हैं। घाट पर 3,50,000 से अधिक दिए प्रज्वलित किए गए हैं। दिल्ली वासियों के लिए सैंड आर्ट, ड्रोन और लेजर शो का प्रदर्शन भी किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राम दरबार में तिलकोत्सव और पूजा से किया। इसके बाद राज्यपाल ने वासुदेव घाट पर दीप प्रज्वलित कर यमुना आरती भी की। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सिविल लाइन्स स्थित दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाना है। आतिशी ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स स्कूलों के माध्यम से छोटी उम्र से ही बच्चों को खेलों के लिए तैयार कर रही है, जिसके चलते वो ओलंपिक मेडल लेकर आएंगे और दिल्ली सहित पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली पुलिस को अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कवच के अंतर्गत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत 486 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कवच के चलते मादक पदार्थों की तस्करी मामलों में 18 और अवैध शराब मामलों में 6 गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा विधानसभा का 15वां सत्र आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज हरियाणा में निर्बाध विकास का अनुकूल माहौल है। ये सुनिश्चित करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इस अनुकूल समय का अधिकतम लाभ राज्य और उसकी जनता को मिले। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि इन चुनावों में राज्य सरकार को ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता पर असर पड़ा। इसके चलते राजधानी की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनेक उड़ानों में देरी हुई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि हवा की गति में कमी के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोहरे का असर देखने को मिला है।
ये जो स्थिति है ये इसलिए हुआ है क्योंकि विंड्स बहुत काम है। 5 knots का विंड चल रहा है जो कि 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड है। इन कारणों से ये फॉग का जो लेयर है ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आवर्स में परसिस्ट करने का संभावना है। कल मॉर्निंग में वेरी डेंस फॉग होने की संभावना है।
इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 439 दर्ज किया गया। बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के आंकड़े को पार कर गया है। आनंद विहार में ये 467, वजीरपुर में 466, बवाना में 460, जहांगीरपुरी में 467, आरकेपुरम में 460 और रोहिणी में 458 दर्ज किया गया। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। श्री सचदेवा ने दिल्ली के गैस चैम्बर से तुलना करते हुए कहा कि PM2.5 का स्तर 400 और PM10 का स्तर 1000 को पार कर गया है। इसके कारण दिल्ली वासियों को खांसी, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत हो रही है। इसके अलावा श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 20,700 से अधिक मौत गंदे पानी के कारण हुई। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए CSIR निस्पर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने वैज्ञानिक रूप से मान्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने में वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित पारंपरिक ज्ञान के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस पद पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का मनोनयन किया। राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि सवेरे और रात्रि के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। दिल्ली में विश्वविद्यालय निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने आज 10 मीटर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। ये भारत का प्रतियोगिता में 3रा स्वर्ण पदक है। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में 5वें स्थान पर रहने वाले और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में रजत पदक जीतने वाले ऐश्वर्य आखिरकार स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा विधानसभा का 15वां सत्र आज से शुरू। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। और कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी की नवनिर्मित वासुदेव घाट पर पहला दिल्ली दीपोत्सव आयोजित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।